الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے حضرت مولانا عبدالفقار احمد نقشبندی دام رکاتہ ان کی کتاب امور خانداری میں حسن انتظام میں سے پڑھتے ہیں، اور جو باب ہم نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، یعنی اس کتاب میں سب سے پہلے جو ہم نے باب پڑھنا شروع کیا ہے وہ ہے انتظام خانہ، یعنی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، اپنے گھر کا انتظام. جس خانے میں عورت رہتی ہے وہ اس کا ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس کا ملٹی سٹوریڈ ویلا بھی ہو سکتا ہے، محل بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا گھر کہلاتا ہے. تو شروع میں اس کے بہت سارے دوسرے مضامین بھی اس کے تحت حضرت نے لکھے تھے. تن اور من کو صاف رکھنے کی اہمیت، اس کے اندر جو ہے وہ روحانیت کی بھی باتیں حضرت نے فرمائی تھیں. پھر اس کے اندر تربیت اولاد کے سلسلے میں بھی چند اہم باتیں شامل ہو گئی تھیں، اگرچہ کہ تربیت اولاد کا مضمون موضوع نہیں تھا، لیکن کیونکہ گھر کے اندر اولاد ہوتی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوتی ہے، تو اس کی تربیت بھی گھر کے انتظام کے اندر شامل ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آرگنائزیشن کے اوپر بات کری تھی، یعنی ترتیب، جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں تو ان کو پراپر ترتیب دینا جو ہے وہ بھی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ میں، گھر خانہ داری کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہم ٹاپک آج شروع کر رہے ہیں نا، یہ ہاں آج ہی شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے انتظام وغیرہ کا موضوع مکمل کر لیا تھا پچھلے ہفتے، وہ ہے ایکچوئل گھر کی صفائی. ٹھیک ہے، یعنی کلیننگ، صفائی ستھرائی، جو کہ خطبے میں جو آیت پڑھی جاتی ہے اس والے موضوع کے، کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو متطہرین کا جو لفظ ہے وہ ظاہری صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور اب ہم اگزیکٹلی وہی والا ٹاپک شروع کر رہے ہیں. تو گھر کی صفائی میں سب سے پہلے حضرت فرماتے ہیں کہ اب اگلی بات ہے گھر کی صفائی، یعنی آرگنائزیشن وغیرہ نے مکمل ڈسکس کر لی، اب ہم ایکچوئل صفائی کے اوپر آ رہے ہیں، رگڑائی کے اوپر آ رہے ہیں، تزکیے کے اوپر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تزکیہ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی صفائی کا لفظ کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمیں گھر کی صفائی کا ایک شیڈیول بنا لینا چاہیے، اسکیڈول بنا لینا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل سا بنا لینا چاہیے، یہ خواتین کو فرما رہے ہیں. اچھا، تو گھر کی صفائی میں سب سے پہلے جو ہے وہ کچن کی صفائی. سبحان اللہ، کچن کچن کا کیا معاملہ ہوتا ہے گھر کے اندر، کہ یہاں پر وہ چیزیں تیار ہوتی ہیں کہ جو کہ انسانوں، گھر میں رہنے والے انسانوں کے اندر جاتی ہیں، ہے نا، یہ ان کی غذا ہوتی ہیں. آج صبح ہی واکنگ کرتے ہوئے یار جب اپنے صاحبزادی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے بلیاں بہت ہوتی ہیں یہاں پہ پارک کے اندر نا، تو کچھ بلیاں جو ہیں وہ گوشت کے کچھ ٹکڑے کسی نے ڈال دیے تھے کیاری میں پارک کی، تو اس میں جو ہے بلیاں لگی ہوئی تھیں، ان کے بچے بھی لگے ہوئے تھے، بہت ساری کٹنس تھیں وہاں. اور ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک بلی صاحبہ جو ہے وہ چوہے کو کھا رہی ہے. ہم نے کہا یہ تو بڑی اولڈ فیشن بلی ہے، آج کل کی بلیاں تو جو ہے وہ چوہے سے بلکہ ڈر کے بھاگ جاتی ہیں، تو وہ باقاعدہ چوہے کو کھا رہی تھی. ہم نے بیٹے صاحب کو کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے کیسا کھانے کا انتظام کیا کہ بالکل رو فارم میں، ٹھیک ہے، جو جیسا ہے بس ویسے ہی کھاؤ، کچا کھاؤ، پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور مکسنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. वो दो चार चीजों को मिक्स करके कोई सालन नहीं बनाते, कोई उसके ऊपर गरम मसाला नहीं डालते, कोई इसके अंदर जो है वो मिर्च मसाला और सब्जियां वगैरह नहीं मिक्स करते, बल्कि जो चीज जैसे है वैसे ही खाना है, तो रॉ फॉर्म के अंदर। अल्लाह ताला ने ये सिर्फ इंसान को शर्फ बख्शा है कि वो पका के खाता, पकाना सिखाया उसको, और मिला करके भी खाता है, 10 चीजें मिला करके जो है वो एक डिश बनाता है, कितनी लजीज और कितनी शानदार किस्म की वो डिश होती है। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा होता है? ये घर के किचन में हो रहा होता है, या इवन अगर रेस्टोरेंट में भी जाएं या होटल में भी जाएं तो वहां पर भी किचन होता है, वहां पर खाना जो है तैयार हो रहा होता है। और खाना जो होता है वो फिर हमारे जिस्म का जुज बनता है, ठीक है, हमारे जिस्म का जुज बनता है, यानी हमारा जिस्म उसी की बुनियाद पर बनता है। इवन फिजिकल सेल्स वो भी खाने से बनते हैं, और जो रूहानियत भी होती है वो भी खाने से बनती है, ठीक है। और अगर हराम खाया जाए या नाजायज चीज खाई जाए, नाजायज जरिए से हासिल करके कोई चीज खाई जाए, तो उसका इंसान की रूहानियत के ऊपर असर होता है, उसका दिल जो है वो स्याह होता है, इंसान होता है। कुदरतन हम मर्दों में जो सूरह मायदा की तफसीर पढ़ रहे हैं उसमें सारा का सारा जो मौजू चल रहा है वो खाने से ही मुताबिक है, ठीक है, कि ये चीज हराम है, ये चीज हराम है, ये चीज हराम है। और अब जो है वो 5वीं आयत के अंदर बात हो रही है कि क्या चीज हलाल है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो खाना कितना अहम है, तो खाने की जगह किचन भी जो है वो जाहिर है कि कितनी अहम होगी। तो किचन की सफाई पढ़ने से पहले एक बात और जहन में आ गई, तो वो भी आपको सामने गोश गुजार करते जाएं कि घर की सफाई की चूंकि बात हो रही है ना, तो एक चीज बहुत जो है वो अहम है इसके अंदर, कि अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम में से बहुत सों को जो है ना वो इतना तो अता किया है कि हम घर के अंदर सफाई करने वाली अफोर्ड कर सकते हैं या सफाई करने वाले अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर वालियां भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, सफाई करने वालियां जिनको मासियां कहते हैं या जो भी आपके यहाँ कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, तो वो भी हैं। फिर माशाल्लाह हाउस बॉय भी मिल जाते हैं, घर के पाकिस्तान के बाहर रहने वालों के घरों के अंदर जो है हाउस बॉयज आ जाते हैं, और भी जिनके पास ज्यादा माल है, ज्यादा अल्लाह ताला की दौलत दी हुई नेमत है, तो फुल टाइम रहने वाले भी, राइट, मेड्स जो होती हैं वो इन हाउस मेड्स भी मिल जाती हैं उनको, और सर्वेंट्स भी मिल जाते हैं। तो ये सब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला का एहसान है, इसके ऊपर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए बेशक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अब जो घर वाले हैं वो बिल्कुल हाथ ना लगाएं सफाई सुथराई की चीजों को, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि घर वाले तो अब बिल्कुल ही जो है ना उनका तो कोई, यानी या तो उन्होंने कोई वास्ता नहीं रखना सफाई सुथराई से, या जो भी करवाना है वो बस काम करने वाले से ही करवाना, खुद कुछ नहीं करना, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि इससे जो है ना फिर एक दो आदतें खराब हो जाती हैं, आप बहुत ज्यादा जो है होते हैं वो सेंसिटिव बन जाते हैं, यानी टच मी नॉट किस्म की आपकी एक फितरत बन जाती है, और कल को खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा मामला हो, लेकिन कोई डिजास्टर हो जाए, कोई जो है वो मसला पेश आ जाए, तो फिर आपको कुछ करना नहीं आता, ठीक है, क्योंकि आपने खुद कभी कुछ किया नहीं, तो इस वजह से आपको कुछ पता ही नहीं है क्या क्या चीज कैसे होती है, तो उस वक्त जो होती है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। खुसूसन बच्चों की तरबियत के अंदर ये बात भी शामिल जरूरी है कि उनको घर के सफाई सुथराई के अंदर भी इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। ये चूंकि खवातीन की क्लास है तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो खवातीन और बच्चियों की होती है, मर्दों को या लड़कों को जो है वो बाहर के काम करवाने के ऊपर वो बहुत दफा बात होती रही है, लेकिन इट्स वर्थ रिपीटिंग कि बाहर की दौड़ धूप जो है, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, उन्होंने बाहर की खाक छाननी है और ग्रोसरी भी करनी है और दूर दीगर काम काज भी करने हैं, लेकिन अंदर की जो सफाई सुथराई वगैरह है ये ज्यादातर बच्चियों, लेकिन साथ साथ जो है वो बच्चों को भी इसके अंदर किसी हद तक ताकि उनकी भी तरबियत हो जाए इस तरह की, उनको भी शामिल रखना चाहिए। तो वरना फिर बच्चों की आदत जो है वो बहुत खराब हो जाती है, और फिर जाहिर है फिर बाद में जाकर के उनको खुसूसन मतलब इवन लड़कों के साथ भी ये मामला है, लड़कियों के साथ भी ये मामला है कि कल को उनकी शादी होगी तो किस किस्म का घर उनको मिलेगा। ठीक है, लड़की दूसरे घर जाती है, ससुराल में जाती है, तो वहां पर ज्यादा एहतमाल होता है कि भाई सब ऑब्वियसली बिल्कुल ही कोई डिफरेंट किस्म के लोग हो सकते हैं, उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, उनके मिजाज डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इवन लड़के के लिए भी कि भाई जो बेगम साहिबा आई हैं तो वो बेगम साहिबा का भी तो डिफरेंट मिजाज होगा ना, मतलब ये हो सकता की बात भी नहीं है, होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो भाई आपको उन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कहने का मकसद खाली ये था कि भाई बच्चों की जो है ना वो तरबियत फिर भी करनी है, उनको सफाई सुथराई के काम करवाने हैं, बेशक आपके घर के अंदर खादम और खादमाओं की एक फौज मौजूद। ठीक है, हमारे पास क्या ज्यादा से ज्यादा फौज मौजूद होगी खादिमों और खादिमाओं की, जो अकलमंद बादशाह होते हैं ना, अकलमंद शहनशाह होते हैं, फरमा रवा होते हैं, तो वो अपनी औलाद की तरबियत करते हैं। हमारी तारीख के अंदर भी ऐसे वाकयात बेशुमार मौजूद हैं। एक बड़ा वाकया हमें याद आ रहा है, क्या नाम था उनका, हारून रशीद अब्बासी, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अब्बासी खलीफा, तो उनके दो बेटे थे मामून और अमीन, मामून और रशीद और अमीन और रशीद। तो उन्होंने बेटों को उस्ताद की खिदमत के ऊपर लगाया, ठीक है, इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद के पास भेजा, और खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खिदमत भी करने के लिए। तो एक दफा हारून रशीद साहब जो है वो उस्ताद साहब के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उस्ताद साहब जो है ना वो वुजू कर रहे हैं, और एक बेटा जो है वो वुजू का पानी डाल रहा है उनके पैर के ऊपर, और उस्ताद साहब अपने हाथों से पैर को धो रहे हैं। ठीक है, तो मामून रशीद साहब ने बाद में उस्ताद साहब से बात करी कि उस्ताद साहब, मैंने अपने बच्चों को आपके पास सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए नहीं भेजा था बल्कि खिदमत सिखाने के लिए भी भेजा था। तो उस्ताद साहब ने कहा कि मैं खिदमत सिखा तो रहा था कि वो मेरे पैर पे पानी डाल रहा था, ये खिदमत ही तो थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी खिदमत नहीं, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि एक बेटा आपके पैर के ऊपर पानी डालता और दूसरा बेटा आपका पैर धोता, अपने हाथों से आपके पैर को धोता, ये खिदमत मुझे चाहिए, ये खिदमत मुझे सिखानी है अपनी औलाद को। ठीक है, यानी आप अपने हाथ से अपने पैर भी ना धोएं, मेरा बेटा जो है यानी शहनशाह का बेटा यानी शहजादा जिसको कहते हैं, और इन्हीं दोनों में से फिर मामून जो है बाद में जाकर के अगला खलीफा बना। ठीक है, आज के दौर में हम पहले भी इस तरह की क्लासेस के अंदर बात कर चुके हैं कि हम लोगों ने तो ये चीजें छोड़ दी ना, लेकिन काफिरों ने इन चीजों को अभी भी अपनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो बर्तानिया का शहजादा होता है तो उसको ये लोग जो है वो ऐसी रिगोरस ट्रेनिंग के थ्रू डालते हैं कि जिसके अंदर के उसको जो है ना वो बहुत ही रफ एंड टफ बनाया जाता है, हालांकि बादशाहत है और माल और दौलत की कोई कमी नहीं है, हत्ता के दुनिया के ऊपर जो है वो तसल्लुत की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने बेटों को जो है वो ऐसे तरबियत के थ्रू डालते हैं, हत्ता के जहां पे इन्होंने अपने अफवाज भेजी भी होती है ना जिन मुसलमान मुल्कों में मारने मारने के लिए, तो वहां पर अपने शहजादों को भेजते हैं कि भाई तुम भी जरा जंग शंग लड़ करके आओ। ठीक है, तो बाकायदा जो है वो वॉर्स का हिस्सा बनता है, फील्ड में जाता है और जितना बहुत कर सकता है वो वहां से करके फिर आता है। और जो हमारे मुसलमान बादशाहों के उनके तरबियत याफ्त है ना, दोनों ने जिन मुसलमान बादशाहों की तरबियत करी है तो उनकी भी तारीख में लिखा हुआ है, यानी आजकल के जो मुसलमान बादशाह गोरों के तरबियत याफ्ता जो होते हैं, कि उन बादशाहों की भी जब वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, अभी तो ऐसे है ना मुसलमान बादशाह जो कि इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते थे, तो वो इंग्लैंड जो गए तो वहां पर इंग्लैंड वालों ने उनकी भी जरा दबा करके जो है ना वो ठुगाई करके उनकी तरबियत करी थी। ठीक है, लेकिन वो अपने अपने मकसद के लिए तरबियत कर रहे थे, जाहिर है फिर उनको अपना ही फायदा उठाना था उससे। बहरहाल, तो बच्चों की तरबियत जो है वो सफाई सुथराई करवा के ही होती है, सिर्फ पढ़ा लिखा कर नहीं होती। अच्छा, किचन की सफाई में हज़रत फरमाते हैं कि मसलन किचन में रात सोने से पहले जितने बर्तन धोने वाले हैं सबको आप डिश वॉशर में डाल दें ताकि वो रात में धुल जाएं, और सुबह जब आप उठेंगी तो सारे बर्तन आपको साफ मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके घर में एक ऑटोमेटेड मशीन मौजूद है जिसको डिश वॉशर कहते हैं, तो रात को उसके अंदर का बर्तन लोड कर दें और फिर उसका साइकिल चला दें, और वो फिर एक आधा एक घंटा जितना भी देर वो चलता है तो वो फिर आपके बर्तन धुल जाएंगे, फ्लश भी हो जाता है पानी उसके अंदर से। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई मैनुअल डिश वॉशर है जैसे कि है, वो तो फिर दिन में ही आएगी या दिन में ही आएगा, तो वो दिन में जाहिर है उसको धो लेगा, रात को जो है वो गंदे बर्तन नहीं छोड़े। हत्ता कि जिस दिन आपकी मासी जो है वो छुट्टी कर जाए या हाउस वाइफ छुट्टी कर जाए, तो रात को सोने से पहले घर का कोई फर्ज जो है वो बर्तनों को धो दे। ठीक है, यानी गंदे बर्तन जो है वो सिंक के अंदर ना छोड़े जाए, ये कहना चाह रहे हैं सब। ठीक है, फिर उसके बाद जब सिंक खाली हो जाएगा गंदे बर्तनों से, तो फिर सिंक को बेकिंग सोडा के साथ स्क्रब करना चाहिए। ठीक है, बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर खास क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो किसी ऐसे चीज जो स्पंजेस होते हैं स्क्रबिंग स्पंजेस, तो उसमें बेकिंग सोडा जो है वो डाल करके इसको स्क्रब करना चाहिए, यानी अच्छे से जिसको मांझना कहते हैं। एक्चुअली मांझना बर्तनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन रगड़ना सिंक को जो है वो रगड़ने का लफ्ज के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, बेकिंग सोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की एक क्लीनिंग सप्लाई होती है, आप खाने में इस्तेमाल करती हैं सफाई के लिए भी, ये डेफिनेटली बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग सॉल्यूशंस, जिसको उर्दू में साफी महलूल से ट्रांसलेट किया जाएगा, तो क्लीनिंग सॉल्यूशन के साथ सिंक को वाइप भी कर देना चाहिए। ये जो स्प्रे और वाइप्स हैं घर की सफाई में उनकी बड़ी अहमियत है। तो अब ये बेकिंग सोडा के जरिए से जो सिंक को स्क्रब करना है, ये अगर रोजाना नहीं भी हो सके तो भी 2-4 दिन के वक्फे के साथ जो है वो ये कर देना चाहिए। ठीक है, ये भी एक डिसइन्फेक्टेंट ही होता है ना, कुछ चीजें उसके अंदर लगी रह गई हैं, पानी से तो हर चीज जो है वो निकलती नहीं है, तो इस वजह से इस तरह के किसी न किसी सोल्यूशन से या बेकिंग सोडा से उसको साफ कर देना चाहिए। अच्छा, हमने अपने घर वालों को देखा, तो उस मुशाहदे की बुनियाद पर ही आपको बता रहे हैं कि जब वो बेकिंग सोडा के जरिए से या इस किस्म के किसी सोल्यूशन से जब स्क्रब करते हैं ना, तो फिर जो सिंक का टैप होता है ना, नल का जो होता है, तो उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दें, कुछ ऐसी चीज डाल दें जिससे कि अगला बंदा जब आ करके उसको इस्तेमाल करना चाहे तो उसको पता लग जाए कि भाई इस वक्त जो है ना वो हमने पानी नहीं खोलना है। क्योंकि जब इस तरीके से आप स्क्रब करते हैं ना, तो फिर उसमें उस चीज को जो क्लीनिंग सोल्यूशन या बेकिंग सोडा होता है उसको जो है वो कुछ देर तक रहना चाहिए। ठीक है, तो वो ना कट करता है वो ऐसी जितनी चीज गंदगी की जो जरात वगैरह होते हैं, तो उसको टाइम लगता है उन चीजों को डिजोल्व करके तोड़ने में, छोटे छोटे उसके टुकड़े बनाने में, ताकि इवेंचुअली वो फ्लश आउट हो जाए। तो इस वजह से पानी का इस्तेमाल जो होता है वो चंद घंटों के लिए नहीं करना चाहिए। तो अब अगला बंदा कोई घर का आ रहा है, पहले पहली बात तो घर के सारे अफराद को बता दें कि भाई हम जो कपड़ा डालते हैं ना नलके के ऊपर, उसका मतलब ये होता है कि आपने नल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जाहिर है उनको पता होगा तभी वो, वरना तो वो कपड़ा हटाएंगे और नल का इस्तेमाल कर लेंगे और फिर वो सारा जो आपने सोल्यूशन डाला होगा वो बह जाएगा। ठीक है, तो लोगों को बता भी दें, बच्चों को बड़ों को, और फिर उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दें। ये ना हो कि अगला बंदा आया उसने जो है वो पानी खोल दिया, अब जो है वो चीख चिल्ला चल रही है, क्यों तो क्यों मैंने अभी सफाई करी, भैया मुझे क्या पता आपने सफाई करी थी। ठीक है, तो इस तरह की शोर मचाने की जरूरत नहीं है, बस उसके ऊपर कपड़ा डाल दें। ठीक है, और ये काम जाहिर है रात को सोने से पहले ही करना होगा, क्योंकि दिन में तो फिर जरूरत ज्यादा पड़ती है, रात में ही जो है वो फारिग रहेगा। ठीक है, अच्छा, किचन की सफाई के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट 3 अज्जा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए नहीं है लेकिन पीछे हम थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं उनको अरेंजमेंट वाले टॉपिक के अंदर, लेकिन अब जो है वो दोबारा से इसको थोड़ा और पढ़ना है या आपको बताना है कि काउंटर टॉप्स, काउंटर्स जो होते हैं ना, जो जो स्लैब वगैरह होती है उसको काउंटर टॉप्स भी कहते हैं, जिनके ऊपर जो है वो रख करके फिर कटाई और काम वाम वगैरह हो रहा होता है, तो उन काउंटर टॉप्स की सफाई नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 किचन अप्लायंसेस की सफाई, ठीक है, यानी माइक्रोवेव है, अवन है, और टोस्टर है, या टोस्टर अवन है, ठीक है, तो इनकी सफाई अप्लायंसेस की। इसकी एक टेक्निक जो है वो हमने सुनी है या कहीं पढ़ी भी थी कि जैसे माइक्रोवेव की सफाई है, तो उसके अंदर जो है ना वो अगर आप पानी को रखें और माइक्रोवेव के अंदर ही उसको बॉईल कर दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे स्टीम निकलेगी, स्टीम, ठीक है। तो वो स्टीम से जो है ना वो उसके जो अंदर की वॉल्स होंगी वो साफ हो जाएंगी, ठीक है। उसके अंदर कोई जर्रात वगैरह लगे हुए होंगे तो वो जर्रात लूज हो जाएंगे, इसको स्टीम क्लीनिंग कहा जाता है, ठीक। अब वो स्टीम कहाँ से आप लेकर के आएंगे, उसके अंदर ही पानी के एक होल रख जो कि माइक्रोवेव फ्रेंडली हो, ऐसा यानी देखिए माइक्रोवेव के अंदर आपको पता ही होगा कि स्टील की कोई चीज नहीं रखनी, बल्कि मेटल की कोई चीज नहीं रखनी, हत्ता कि प्लेट में खाना भी अगर गर्म करना है ना तो माइक्रोवेव के अंदर आपने स्टील का चम्मच वगैरह नहीं रखना है, हत्ता कि प्लास्टिक भी जो है ना वो कोई ऐसा प्लास्टिक नहीं होना चाहिए जो कि मेल्ट आसानी से हो सके। तो माइक्रोवेव की फ्रेंडली जो होती है, यानी जो माइक्रोवेव में इस्तेमाल के काबिल जो यूटेंसिल्स होते हैं, खाली उन्हीं को इस्तेमाल करना है माइक्रोवेव के अंदर, ठीक है। तो स्टीम क्लीनिंग इस तरीके से कि आप किसी इस तरह के बोल के अंदर, जैसे सीरियल बोल होता है, उसमें पानी भर के रख दें, तो वो थोड़ी देर में जब वो बॉयल हो जाएगा तो उससे जो स्टीम निकलेगी ना, तो उससे माइक्रोवेव के अंदर की वॉल्स जो हैं उनमें पार्टिकल्स वगैरह लगे हुए होंगे ज्यादा, तो वो लूज लूज अप हो जाएंगे और फिर उसको आप वाइप कर लें आसानी से, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो वही सिंक की क्लीनिंग है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने कुछ लिखा है, बंद हो जाती है जब आप पेज चेंज करते हैं। बहुत बार बता दिया जाता है पर घर के लोग बेध्यानी में वही काम करने लगते हैं जिससे घर का माहौल खराब होता है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, बेध्यानी तो फिर बेध्यानी होती है, तो इसी वजह से तो कपड़ा रखने की बात कर रहे हैं ना, कि बेध्यानी खाली बताने का फायदा नहीं होता, तो इसी वजह से उसके ऊपर कोई कपड़ा रख नहीं, अगर रखने से अभी फायदा नहीं हो रहा, आएंगे हटा करके फिर जो है वो नलका खोल देंगे, तो टाइट से बांध दें, यानी ऐसा कोई मामला हो जाए कि उनको जो है ना वो एफर्ट करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े उस नलके को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि जब उनको मेहनत करनी पड़ेगी तो मेहनत से, वैसे ही ऐसे बेध्यान इंसान जो होते हैं ना वो फिर कामचोर भी तो होते हैं ना फिर साथ साथ, ठीक है। तो जहां पे उनको मेहनत नजर आएगी ना, उधर ही वो छोड़ देंगे और किसी और जगह जाकर के फिर हाथ धो लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करके देख लें, बाकी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आसानी फरमा दीजिए मेरे लिए, अल्लाह ताला फिर याद करवा भी दिया करेंगे लोग, ठीक है। अल्लाह ताला तो फिर हर जगह ही है ना, हर काम के अंदर अल्लाह ताला जो है वो मौजूद रहते हैं हमारे साथ, अगर हम अल्लाह ताला को याद करें, हम ही खुद ही भूले हुए होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा कसूर है, सारा काम हम खुद ही करना चाहते हैं, भाई अल्लाह ताला को भी तो शामिल रखना है अपने साथ, ठीक है। चलें, ये हो गया। अच्छा, अगले टॉपिक पर आते हैं, टेबल वगैरह की सफाई। तो कहते हैं कि काउंटर टेबल के ऊपर साफ सुथरे कपड़े डालने चाहिए, और इसी तरह डिश टॉवल्स भी अपनी अपनी जगह पर रखने चाहिए, यानी वही जो काउंटर टॉप्स की बात अभी हो रही थी, तो वही काउंटर टॉप्स यानी जो किचन के अंदर की जो टेबल्स होती हैं, चाहे बेशक आपने एक अलग से एक मेज रखी हुई हो किचन के अंदर, अगर आपकी किचन में जगह है तो बाकायदा एक मेज भी आ सकती है उसके अंदर, या इस किस्म की जो मार्बल या जो भी ओनेक्स वगैरह के बने हुए टॉप्स होते हैं, तो जो यानी बर्तन धोने के बाद टिपिकली जो बर्तन खुश करने के लिए जो है ना, यहाँ पे मैनुअल डिश क्लीनर्स होते हैं, इंसान खाली होते हैं, वरना तो डिश वॉशर्स जो होते हैं उनके अंदर तो क्लीनिंग भी हो जाती है, सॉरी उनके अंदर तो ड्राइंग भी हो जाती है ना बर्तनों की, ठीक है। लेकिन हाथ से जहाँ पे धोने का निजाम होता है तो वहां पर फिर आपको कहीं पे बर्तनों को रखना होता है ताकि वो ड्राई हो जाए, फिर जो है वो आप उनको ड्रॉर्स वगैरह के अंदर रख सकती हैं, गीले बर्तनों को आप ड्रॉर्स के अंदर नहीं रख सकते। तो उसके लिए जो काउंटर टॉप्स होते हैं उनको साफ करना, ठीक है, इवन घर में अगर कोई हाउस बॉय आ रहा है तो हमारे घर वाले जो हैं वो हाउस बॉय के आने से पहले काउंटर टॉप को बाकायदा उसके ऊपर से चीजें हटाते हैं, जगह बनाती हैं और उसको इस हद तक साफ कर देती हैं कि फिर वो बर्तनों को धो करके उसके ऊपर सूखने के लिए रख सके। हाउस बॉय की या हाउस मेड की आप कंप्लीटली उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हर चीज में आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो कुछ चीजें खुद से उनके लिए करनी पड़ती। ठीक है, जितना कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ओवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हैं तो उनके लिए जगह वगैरह बना देनी चाहिए। खुशूसन जो ये लोग आकर के झाड़ू वगैरह देते हैं ना, तो अगर कोई चीज पड़ी भी है ना तो वो उसको हटा करके उसके पीछे झाड़ू नहीं देंगे, इतना एहसान नहीं करते। ठीक है, तो इसके लिए चीजों को थोड़ा सा हटाना पड़ता है, खुशूसन जब कमरे में मॉप करवाना होता है। तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह निजाम है कि जिस भी कमरे का मॉप जिस दिन करवाना है ना, तो बच्चे या बड़े खुद चीजों को हटा देते हैं, उठा करके जो है वो किसी सोफे वगैरह के ऊपर रख दिया, हत्ता के सोफों के पीछे जो है वो बहुत गर्दो गुबार यहाँ पे जमा हो जाती है, क्योंकि हर जगह ही जमा हो जाती है, तो कभी कभी जो है वो सोफों को अपनी जगह से हटाना भी पड़ता है। ये आप उनके ऊपर ये सारी चीजें नहीं छोड़ सकते, बहुत ही कोई नेक होगा तो वो कभी जो है ना वो तकलीफ कर लेगा या कर लेगी, वरना उन्होंने नहीं करनी है। ये घर वालों को ये काम खुद करना पड़ता है, ठीक है, उनके लिए सहूलत बनानी पड़ती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हमारा मिजाज बना हुआ है कि हम समझते हैं कि डांट डपट करके जो है ना वो हम सारे काम करवा रहे हैं, डांट डपट करके। तो अब ये डांट डपट करने से समझते हैं कि हमारे काम बन रहे हैं, लेकिन वो हमारे काम बिगड़ रहे हैं। ठीक है, हम बहुत ही जो है ना वो डिरोगेटरी तरीके से तजलील आमेज लहजे में जो है वो घर के काम करने वालियों और काम करने वालों के साथ बात कर रहे होते हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे होते हैं, क्या अपने आप को जो है वो ऊंचा समझा हुआ होता है या मुबर्रा समझा हुआ होता है कि हमें तो इन अखलाकियात की जरूरत नहीं है। तो एक मिजाज बना हुआ है हमारे यहाँ, हमने बहुत देखा है ये पाकिस्तान में बचपन से, चीज बहुत देखी है कि यानी बुरे लहजे में जो है ना बात करके हम समझते हैं हमारे काम बन रहे हैं। वो बजाहिर तो आपके काम कुछ बन जाते हैं, लेकिन जो बिगड़ रहे होते हैं ना वो आपको नजर भी नहीं आ रहे होते, समझ में भी नहीं आ रहे होते। एक तो उसके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो रही होती है, गुस्सा जो है वो कीना उसके दिल में, लेकिन वो मजबूर होता है, काम करने वाला या काम करने वाली मजबूर होती है, इस वजह से वो उसका इजहार नहीं कर रही होती है। ठीक है, जो जाहिरी तौर पर इजहार किया जाता है उसको कहते हैं गुस्सा। काम करने वाले आपके मातहत क्योंकि आपके तनख्वाहदार मुलाजिम है ना, तो वो गुस्सा तो दिखा नहीं सकते आपको, मजबूरी की वजह से गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है जिसको कहते हैं कीना। ये कीना जो होता है ना, ये छुपे हुए गुस्से को कहते हैं, ये दिल में पैदा होता है। अभी बच्चों की क्लास में भी सर ने यही बात समझाई थी, है ना, भाइयों को कि भाई बहनों के साथ ऐसे मत किया करो कि उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ कीना पैदा हो जाए। ठीक है, और किस तरह समझाया था किसी को याद है क्या बताया था? कि जब छोटे होते हैं ना तो जब तंग करते हैं किसी को तो फिर वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो आंसू बाहर गिर जाते हैं रोने धोने से। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं और बड़े किसी इंसान को जब तंग किया जाता है या उसको उसको जलील किया जाता है, तो अब उसके आंसू बाहर नहीं गिरते बल्कि उसके आंसू अंदर गिरते हैं, और जब अंदर गिरते हैं ना तो आंसुओं के अंदर होता है नमक, और नमक जब अंदर गिरता है तो फिर उससे दिल जो है ना वो मैला हो जाता है, खराब हो जाता है, इसी को कीना कहते हैं। अब जाहिर है फिजिकली ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो हम एक हाइपोथेटिकली आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कि जो अपने गुस्से का इजहार जाहिरी तौर पर नहीं कर सकता ना, तो फिर अंदर ही अंदर उसके दिल में फिर कीना पैदा हो रहा, और ये हमारे मुआशरे में बहुत आम है कि हम इतना जलील कर देते हैं किसी अगले बंदे को कि वो अंदर ही अंदर जो है ना वो हमारा दुश्मन बन चुका होता है, और फिर जहां उसको मौका मिलता है वहां फिर वो हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारी निगाहों से छुप करके फिर वो हमें नुकसान पहुंचाता है। ये हमें समझ में नहीं आती ये बात। ठीक है, तो भाई ये तरीका नहीं है काम करवाने, जो कि हम लोगों ने अपनी क्या कहें इसको, तो हालत ही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं इसको। ठीक है, इंसानी नफसियात के बारे में हम बिल्कुल जाहिल है ना, ठीक है, तो हम जो है वो ऐसे जो है वो मिस हैंडल करते हैं, तो फिर हमें खुद ही नुकसान हो रहा है बाद में। तो भाई आप तरतीब को चेंज करने की कोशिश ना करें ना, तरतीब तो वो तरतीब होती है जो कि अल्लाह ने बनाई, वो तरतीब होती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सिखाई है, ये तरतीब होती है। हमारी बनाई हुई तरतीब कोई थोड़ी तरतीब कहलाने के काबिल चीज है। हमने तरतीब उलट दी कि जो है ना वो बंदे को जलील करके उससे काम करवाएं, ये तो उल्टी तरतीब बना ली ना आपने, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरतीब तो नहीं थी ना, राइट? तो भाई अल्लाह की बनाई हुई और रसूलुल्लाह की बताई हुई तरतीब के मुताबिक काम करो यार, तो अल्लाह ताला की मदद भी फिर शामिल हाल होगी, राइट? जब अल्लाह की तरतीब को छोड़ करके अपनी तरतीब पे काम करोगे तो अल्लाह की मदद कैसे शामिल हाल? तो फिर वही फसाद होता है, फिर घर घर के अंदर फसाद होता है, बाहर बाहर के अंदर फसाद होता है, क्योंकि तुमने अल्लाह को नाराज किया हुआ है ना। ठीक है, वही जो हमारे बच्चों की क्लास में जो है वो सुनाया भी था वाकया, वो आपने लिख दिया था डायरेक्ट मैसेज में, ठीक है ना, वही वाला लतीफा भी पिछले हफ्ते हमारे आदाब की क्लास के अंदर अंकल ने सुनाया था बच्चों को, कि मियाँ बीवी को तंग करता था, नहीं मियाँ बीवी को तंग करता था, उन्होंने तो सुनाया था कि बीवी मियाँ को बहुत ज्यादा डांटती थी, ठीक है, तो जो भी था मियाँ बीवी को करता था या बीवी मियाँ को करती थी, तो किसी ने कहा कि भाई तुमको तो ये बड़ा तंग करती है, या ऑन द अदर साइड बीवी को कहा कि तुमको तो ये बड़ा तंग करता है, तो उसने जवाब दिया कि कोई मसला नहीं है, मैं अपना बदला ले लेती हूँ, मैं इससे अपना बदला ले लेती हूँ। उसने कहा कैसे बदला ले लेती हो? तो उसने कहा कि मैं जो हूं ना वो बाथरूम साफ करके अपना बदला ले लेती। तो पूछने वाले ने पूछा बाथरूम साफ करके तुम कैसे बदला ले लेती हो? तो उसने कहा कि मैं इसके टूथब्रश से बाथरूम को साफ करती, मैं इसके टूथब्रश से बाथरूम को साफ करती हूँ, ठीक है। तो ये जब दिल में कीना होता है ना तो इंसान ऐसे नुकसान पहुंचाता है। अब वो ऊपर से जो है वो टूथब्रश को थोड़ा सा साफ कर देती होगी, लेकिन आप तस्वुर करें ना, मतलब ये रियलिटी में भी ये हो सकता है कि आप जो है वो अपने घर के काम करने वालों को इतना तंग कर रहे हैं कि वो आपकी किसी ऐसी पर्सनल चीज के जरिए से जो है वो बाथरूम साफ करे, आपको क्या पता, आप देख सकती हैं जाकर के उस जगह को कि वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, राइट? अल्लाह तो देख सकता है ना कि वो क्या कर रहा है, आप तो नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह को तो आपने खुद नाराज किया हुआ है, अल्लाह से तो आपने खुद जो है वो दुश्मनी लगाई हुई है, नबी अलैहिस्सलाम की तरतीब को छोड़ करके अल्लाह की बनाई हुई तरतीब को तोड़ करके, राइट? तो अल्लाह अब कैसे आपकी मदद करेगा, अल्लाह क्यों आपकी हिफाजत करेगा? नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ उसूल नहीं है, जो अल्लाह को राजी करता है फिर अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है, लेकिन हमें यह बात नहीं समझ के यार नहीं समझ में आके दे रही, ठीक है, समझते हैं निवादे टक्करे मार मार करके और चक्कर काट काट करके जो है ना वो काबतुल्ला के गिर जाएंगे और चक्कर काट काट के आ जाएंगे, सारा जो है वो अल्लाह को राजी करने का काम हो गया, कर लिया हमने तौबा, कर लिया हमने जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी, लेकिन इंसानों के साथ अल्लाह के बंदों के साथ हमारा कितना बुरा सलूक होता है, कितना बुरा रवैया होता है, ठीक है, समझाने पर भी नहीं मानते। ये तो ठीक है हमें गलत फहमी थी, हम बात समझ नहीं, हमें पता नहीं था हमने गलती कर ली, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इल्म पहुंचा दिया आपके पास, राइट, इल्म पहुंचा दिया, समझाने वाले ने आपको बात समझा दी, अब तो मान लो ना यार, अभी भी नहीं मानते, और अजाब उसी वक्त आता है जब अल्लाह ताला इल्म पहुंचा देते हैं फिर भी हम नहीं मानते, फिर अल्लाह का अजाब आता। आज की इतनी सी सिंपल सी बात हमारे समझ में आ जाए, मानने इस बात, ठीक है, तो काउंटर टेबल से बात शुरू हुई थी, क्योंकि काउंटर टेबल्स के लिए वो कुछ साफ करके खुद भी जो है ना करके देना पड़ता है, सारा जो है वो डांट डपट के जरिए से आप घर के खादिमों से काम नहीं करवा सकते, ठीक है, वो आपके हमारे इज्जत फरमाते हैं ये तुम्हारे कोई जर खरीद गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम, जर खरीद का मतलब पता है, जिसको आप पैसे दे करके जो है ना वो खरीद लेते हैं तो फिर वो आपका गुलाम बन जाता है, आजकल ये जर खरीद गुलाम होते ही नहीं, मौजूद ही नहीं होते ना, गुलामी का सिस्टम खत्म हो चुका दुनिया से अब, तो जो हैं या तो आपके तालिबे इल्म हैं या आपके जो है वो औलाद हैं, या आपके जो है वो खादिम है जिनको कि आप तनख्वाह देते हैं, बस खरीद कोई थोड़ी लिया आपने उनको। वैसे तो खरीद भी लिया होता तो कौन सा वो आपके बंदे तो नहीं बन जाते खरीद लेने की वजह से, तो आप खुदा बन जाए वो आपके बंदे बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। इवन अगर आपने खरीद भी लिया होता, लेकिन इन लोगों को तो हमने खरीदा भी नहीं होता, इनको तो इनकी खिदमात के एवज जो है हम थोड़ा सा तनख्वाह दे देते हैं बस, जिससे कि उनकी वैसी जरूरियात पूरी नहीं होती हैं। इतनी कंजूसी से उनको तनख्वाह देते हैं कि उनकी जरूरियात पूरी नहीं होंगी उससे। ठीक है भाई, अखलाक, अच्छे अखलाक के जरिए से इंसानों के साथ हमने डील करना है, क्योंकि हमें हुक्म है ये करने का, हमें ऊपर से अल्लाह ताला का हुक्म है अच्छे अखलाक से पेश, तखल्लुकु बि अखलाक अल्लाह। अच्छा आ गई बात समझ, सबको आ गई ना सबने इंशाल्लाह, अब तो नहीं मासियों के साथ या खुद्दाम के साथ जो है वो बदतमीजी से पेश आएंगे। ठीक है, अगर अल्लाह ताला हमारे साथ इस तरह पेश आना शुरू कर दे ना, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, हम तो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, तो फिर तो हमें यानी क्या कहते हैं उसको, हमें तो सांस लेने के लिए एक सांस नहीं मिलेगी। अगर अल्लाह ताला हमारे आमाल के बदले में हमारे साथ जो वाकई हम डिजर्व करते हैं ना, अल्लाह ताला हमें वो करना शुरू कर देना, तो हमें तो खाने के लिए एक दाना ना मिले, हमें तो पीने के लिए एक घूंट ना मिले। ठीक है, अच्छा तो टेबल वगैरह की सफाई, काउंटर टेबल के ऊपर साफ सुथरे कपड़े डालने चाहिए, और इस तरह डिश टॉवल्स, सफाई के तौलिये वगैरह भी अपनी अपनी जगह पर रखने चाहिए। किचन के अंदर भी एक एक टॉवल होना चाहिए छोटा, कम से कम हाथों को पोछने के लिए। ठीक है, वो आप जो है वो किसी स्टैंड के ऊपर रखने, या इवन फ्रिज के दरवाजे के अंदर जो हैंडल होता है उससे भी जो उसको टांगा जा सकता है, या आप कोई हुक वगैरह लगा दें छोटा टॉवल के साथ जो होता है वो टांगने के लिए, उन्होंने छोटी सी वो भी बनाई हुई होती है, तो उसके जरिए से जो है वो हैंड टॉवल उसको टांग सकते हैं, तो अपनी अपनी जगह के ऊपर रखना। ठीक है, ताकि अगले दिन उन चीजों का इस्तेमाल आसान, घर में जितनी भी हार्ड सर्फेसेस, सख्त सतहें हैं, तो उनको हर दिन में साफ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो आप अपने काम करने वाले की जिम्मेदारी लगा दें, और उनके जरिए से जो है वो उनको रोजाना के हिसाब से साफ करवा लें, या अगर काम करने वाला नहीं है तो फिर नहीं, अपना घर है ना भाई, किसी दूसरे घर को थोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के अंदर खुद सफाई नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अच्छा, इसमें एक और भी बात जहन में आई अभी, कि ये जो घर में काम करने वाले और काम करने वालियां होती हैं ना, ये आपकी तनख्वाह की वजह से आपके महरम नहीं बन जाते। तनख्वाह देने की वजह से ऐसा नहीं होता कि अब शरीयत ने उनको आपका महरम बना दिया। ठीक है ना, गुलामों का जो जमाना था ना, तो गुलामों को अल्लाह ताला ने उसके अंदर थी कि भाई जो बांदी होती थी तो वो बांदी जो है वो बीवी की ही हैसियत के तौर पे होती थी। ये मासियां जो होती हैं ये घर के मर्दों की बांदियां नहीं होती हैं, कि उनके लिए महरम है या पर्दे का जो है वो कोई जरूरत ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो खवातीन की क्लास है, तो इस वजह से याद रखें कि अगर घर में हाउस बॉय काम कर रहे हैं ना, तो वो आपका महरम नहीं है, उससे पर्दा फर्ज, उससे पर्दा फर्ज होता है। ठीक है, और खाली बुरका ओढ़ करके उसके साथ खड़े होकर के किचन में काम कर देना, ये पर्दा नहीं, कि बुरका पहना और अब जो है वो हाउस बॉय के साथ खड़े होकर किचन के अंदर जो है वो काम काज कर रही है, ये पर्दा नहीं होता। ठीक है, पर्दा जो होता है ना वो अलग रहने को कहते हैं, तो अब उसका कोई ना कोई इंतजाम करें, या तो घर के अंदर अल्लाह ताला ने आपको कोई बेटा अता फरमाया है तो बेटे के वास्ते से काम करवाएं, बेटे के जरिए से उसको मैसेजेस करवाएं, या जो भी काम करवाना है। ठीक है ना, या अगर बेटा नहीं है तो शौहर के जरिए से उसको जो भी काम करवाना है उसके शौहर के जरिए से। ठीक है, और वही टाइम उसके साथ सेट करें कि जिस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद हो, आपका महरम या आपका शौहर मौजूद हो, उसी वक्त जो है वो हाउस बॉय घर के अंदर आना चाहिए, ऐसा टाइम ना हो कि जिसके अंदर घर के अंदर कोई भी मर्द मौजूद नहीं है। ऐसे टाइम पे हाउस बॉय को घर के अंदर नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है, हमें बड़ा एतमाद हो जाता है ना, हम तो अजीब मामला है कि अपनों पे तो इतमाद करती है नहीं है और गैरों को प्यारों में ज्यादा इतमाद हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे हौलनाक वाकयात मौजूद हैं कि हाउस बॉय ने ऐसी कोई हरकत करी कि जिसके बाद फिर रोने धोने के अलावा और कुछ बाकी नहीं बचा। हत्ता कि ऐसे भी वाकयात मौजूद हैं कि हाउस बॉय आया और अपने साथ लोगों को ले करके आया और फिर घर के अंदर जो औरत थी उसके साथ उन्होंने फिर बहुत बुरा मामला किया। ये भी हो चुका है, ठीक है, हत्ता के फिर जब घर वाले शोर साहब वापस आए ना तो वो औरत खुदकुशी भी कर चुकी थी, खुदकुशी भी कर चुकी थी। ठीक है, तो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने का जो होता है ना वो बहुत भयानक अंजाम हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करना है। उसी तरीके से अपने घर के जो मर्द हैं तो उनको मासियों से दूर रखा करें और मासियों को उनसे दूर रखा करें। ये नहीं होता कि ये मासी आ रही है तो अब जी वो घर के मर्द साहब जो है वो उनको अपना सगा सगा की तरीके से डील कर रहे हैं। हमारे हजरत ये वाकया सुना चुके हैं, बड़ी खूबसूरत बीवी थी लेकिन शौहर साहब जो है ना वो उनके दिल में घर के अंदर भी एक बहुत ही कोई काली करोटी सी कोई मासी आती थी। अल्लाह ताला ने उसी मासी की मोहब्बत शौहर के दिल में डाल दी। ये एतिकाफ के बयानात में हजरत ये वाकया सुना चुके हैं। ठीक है, तो फिर बीवी रोती धोती पीर साहब के पास आती है ना, फिर उसके बाद तो पीर साहब ने कहा आप अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अल्लाह से माफी मांगें, तो अल्लाह ताला फिर आपके शौहर के दिल से जो है ना वो उसकी मोहब्बत को निकालेंगे क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो आ गई ना मोहब्बत, अब कोई थोड़ी आप निकाल सकते हैं उसको, हंगामा मचा करके और शोर धमाके करके आपके थोड़ी निकाल सकते हैं मोहब्बत को, अब तो अल्लाह ही निकालेगा। तो हजरत ने यही किया उस औरत को कि तुम खुद तो पर्दा करना शुरू करो ना, खुद तो अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल करना शुरू करो, अल्लाह ताला से माफिया मांगो और दुआएं मांगो। और वाकई ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मसले को बाद में फिर हल करवा दिया लेकिन तौबा करने के बाद हल। ठीक है, तो पर्दा जो है वो फर्ज है और पर्दा जो है वो सिर्फ बुरका या किसी चीथड़े का नाम नहीं है जो कि अपने सर के ऊपर या अपने जो है वो जिस्म के ऊपर चढ़ा लिया। पर्दा मीन्स इंटरेक्शन को खत्म करना। हाँ, बहुत ही कोई मजबूरी की सिचुएशन हो जिसके अंदर जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन तब जो है वो खाली, लेकिन घर के अंदर काम करने वालों को क्लियर पता होना चाहिए कि ये घर वाले जो हैं ये पर्दादार हैं और हकीकी मानों में पर्देदार हैं, सिर्फ बुरके वाले पर्देदार नहीं है। ये बुरका वाला पर्दा जो है ना ये हकीकी पर्दा नहीं होता है, धोखा चढ़ा करके जो है वो दो टेबल वगैरह की सफाई के अंदर फिर ये सारी बातें हो गई। बाकी जो है वो कारपेट की सफाई ये एक अच्छा खासा तफसीली मौजू है लेकिन जो कि आज की क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, तो किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, बताना बात शेयर करनी। कारपेट की सफाई है बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है तो इसको हम पढ़ लें, इसमें हो सकता है एक्स्ट्रा बातें ज्यादा ना आए। ठीक है, मेरे ख्याल में जितना लिखा है उतना ही पॉइंट्स भी हैं। चले आप कुछ कह रही हैं आप लोग तो फिर मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ कि कारपेट की सफाई में हजरत ने ख्याल फरमाया कि अगर घर में कारपेट है तो उसको रोजाना वैक्यूम करना चाहिए क्योंकि कारपेट के ऊपर जरासीम जल्दी नशोनुमा पाते हैं। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर घर के अंदर स्पोर्ट्स खरीद के रखेंगी और अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो करें, नहीं कर सकती तो पुराने किस्म के भी वैक्यूम क्लीनर होते हैं जो कि हाथ से ब्रश, हमारे तो बचपन में हम अगर कारपेट घर में होता था तो अम्मी जो है वो लड़कों से ही करवाती थी, ब्रश के जरिए से जो है वो कारपेट को साफ करवाती, कारपेट वाले जो ब्रश। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जरासीम भी जल्दी नशोनुमा पाते हैं, छुपने की उनकी बड़ी जगह होती है कारपेट के फूल वगैरह के अंदर। और काम फिर अनहाइजेनिक यानी हिफ्जाने सेहत के खिलाफ हो जाता है, बच्चे भी उनके ऊपर गीले और मैले पांव से आते हैं तो कारपेट बीमारियों की अमाजगाह बन जाता है। गीले पैर के साथ जो है फिर नजासत जब किसी गीली सरफेस को लगती है ना तो फिर वो ट्रांसफर होती है किसी दूसरी जगह। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कि बाथरूम के अंदर अगर नंगे पैर से कोई चला गया, अब वहां पे कोई नजासत का चीज पड़ी हुई थी तो वो उसके पैर में लग जाएगी और फिर जब वो बाहर आएगा जो भी बच्चा होगा बड़ा होगा तो अब जब वो कारपेट पे जाएगा तो कारपेट पे जो है ना वो फिर गीली हो जाएगी और वो नजासत फिर गीली चीज से गीली चीज में तासीर हो जाएगी। अगर बिल्कुल खुश्क होता ना मामला, तो उससे फिर नजासत ऐसे ट्रांसफर नहीं। ठीक है, खुश्क चीज जो होती है वो एक तरह से हार्ड चीज होती है, वो भूमि तौर पे नहीं पाती, लेकिन जब वो गीली हो जाती है तो गीली होने से फिर वो सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट होने से फिर जो है वो निकल निकल करके दूसरी चीज पे लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से बाथरूमों के अंदर अलग से रबड़ की चप्पल होनी चाहिए, या किसी ऐसे मटेरियल की बनी हुई चप्पल खास बाथरूम के लिए होनी चाहिए कि जिसको के आप पानी से धो सके। ये जो कपड़े की बनी हुई या कॉटन की बनी हुई, इवन फरी किस्म की चप्पलें लोग जो है वो अपने बाथरूम में रख देते हैं ना, तो वो आप धो नहीं सकते, अनलेस कि आप बाकायदा वॉशिंग मशीन में डाल करके उसको धोएं या निचोड़ करके उसको धोएं, वरना तो वो आप ऐसे पानी डाल करके नहीं धो सकते। तो रबड़ की या लेदर की बनी हुई या प्लास्टिक की बनी हुई चप्पलें आजकल बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो जरूर से बाथरूम के अंदर एक फिक्स चप्पल होनी चाहिए। बाहर से एंटर होते हुए बंदा बाथरूम के फर्श पे पैर ना रखे, बल्कि चप्पल में पैर रखे। ठीक है, और अगर बाथरूम के इस्तेमाल के दौरान कुछ कुछ ऐसी चीज चप्पल पे गिर गई है या पैर पे गिर गई है, तो उसको धो करके बाहर निकले, और बाहर भी अलग से एक चप्पल होनी चाहिए, घर के इस्तेमाल के लिए अलग चप्पल, वरना क्या होगा, अंदर से गीले पैर से जो है वो आप बाहर निकले, बाहर फिर जो है वो फर्श के ऊपर नंगे पैर से या कारपेट के ऊपर नंगे पैर से। ठीक, तो इसमें पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि गंदगी और नजासत जो है फिर पूरे घर में जो है वो स्प्रेड आउट हो जाती है। तो रोजाना वैक्यूम करना और साफ करना ये बहुत अहम है, अलबत्ता उसकी सफाई और वैक्यूम में आप अपने बच्चों को भी अपने साथ शामिल कर सकती हैं। अगर 4-5 साल की बच्ची को कोई काम सिखा दें तो वो इस काम को बड़ी खुशी खुशी कर लेती है, और आपको काम में मदद भी मिल जाएगी। ठीक है, 4-5 साल की बच्ची अगर इतनी माशाल्लाह स्ट्रांग है कि वैक्यूम क्लीनर चला सकती है, तो बड़ी अच्छी बात है, वरना उम्मीद तो हमने तो देखा कि हमारे तो बच्चे वैसे ही हमारे जैसे होते हैं कमजोर से, तो 6-7 साल से पहले जो है वैक्यूम क्लीनर ऑपरेट करना इतना आसान नहीं नजर आता। अच्छा, रोजाना हजरत ने लिखा है लेकिन एक दिन छोड़ करके भी चले। ठीक है, एक दिन जो है वो जैसे बाथरूम साफ करने का रख लिया, और ऑल्टरनेट डे जो है वो वैक्यूम के लिए रख लिया, तो इस तरह से भी सिस्टम आप बना सकते। किसी ने सवाल लिखा है कि अगर बच्ची वॉशरूम नंगे पांव जाए और फिर सिर्फ पानी से धो ले तो पांव साफ हो जाएंगे या सोप से धोना होगा, नजासत की बात है इसलिए पूछ रही हूँ। देखें, नजासत जो है वो पानी से दूर हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर खाली इतना हल्का सा डाल दिया जाए पानी कि अगर रगड़ के निकालने वाली चीज है, तो भाई वो खाली पानी डालने से तो नहीं निकलेगी ना, तो उसको फिर आपको रगड़ना भी पड़ेगा अपने हाथ से। लेकिन पानी डाल रहे हैं और हाथ से रगड़ के नजासत की कोई भी चीज लगी हुई है वो निकल जाए तो पाक हो जाए, सोप की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये सोप जो होता है ना आजकल को जो मॉडर्न साबुन जिसको कहते हैं सोप, तो ये जो है खुशबू के लिए होता है। इसकी असल जो इम्पोर्टेंस होती है ना वो नजासत को धोने के लिए नहीं होती, वो बदबू को दूर करके उसको खुशबू से तब्दील करने के। ठीक है, तो शरीयत के अंदर नजासत को दूर करने के लिए पानी है। ठीक है, ये ताहिर भी है और मुतहिर भी है, यानी खुद भी पाक होता है और पाक चीज चीज को पाक कर देने वाली सलाहियत इसके अंदर अल्लाह ताला ने रखी है। ठीक है, तो चाहे बेशक टॉयलेट जो है वो के इस्तेमाल के बाद बायां हाथ जो है वो गंदा है, ठीक है ना, भाई गंदे से मुराद आपने उसको इस्तेमाल किया है ना। ठीक है, अबदस लेना जिसको हम उर्दू जुबान में कहते हैं, लेकिन जब पानी से उसको धो लिया जाता है ना, नजासत दूर हो जाती है। ठीक है ना, सोप की जरूरत नहीं, सोप की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन सोप हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करते हैं। सोप क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक तो एक कराहियत सी बदन में वो एक मिजाज में आ गई है बचपन से, चूंकि इंतजाम बना हुआ है, इस वजह से बाथरूम के अंदर सोप होना जरूरी है जी, सोप इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है ना खुशबू और बदबू के साथ। ठीक है, बैड स्मेल को दूर करने के लिए, गुड स्मेल को लाने के लिए। जब एहराम की हालत में होते हैं तो ये खुशबू वाले सोप तो जायज ही नहीं होते इस्तेमाल करना। ठीक है ना, तो उस वक्त जो है ना फिर माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो सारी जिंदगी सोप इस्तेमाल करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनको शरीयत की फिक्र होती है तो एहराम के हालत में वो सोप नहीं इस्तेमाल कर रहे। हज के ऊपर तो कई दिन का एहराम, ठीक है, तो उसमें फिर हाँ ठीक है, वो आप जो है वो अनसेंटेड सोप मिलना शुरू हो गया, लेकिन वो अनसेंटेड सोप जो है तो है वो हर एक के पास आसानी से अवेलेबल नहीं होते, तो खाली पानी से काम चलाना हो तो नजस भी थोड़ी होता है कि नजस हालत में जो है वो चले चले आ रहे हैं एहराम की वजह से, नहीं, पानी से नजासत दूर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने लिखा कि खाला की दोस्त का इकलौता बेटा था, अच्छे हसब नसब वाली फैमिली, और बेटे ने घर में काम करने वाली से शादी कर ली, अब वो बहू बनकर रह रही है और सास उसको देख देख करके आहें भरती रहती है। माशाल्लाह, आपने कुफ में शादी करी है उसने लगता है। आजकल तो सासे हर कोई देख करके आहें भर रही होती है, चाहे वो अपनी बहन की बेटी क्यों ना हो, ठीक है ना, भाई की बेटी क्यों ना हो, सासे तो सबको ही देख करके आजकल आहें भर रही होती हैं, तो चले काम करने वाली से शादी कर ली, तो बहरहाल जो भी है, क्या कहें अब उसको, असल तो करने का काम तो ये था ना कि पर्दा पर्दा रख देना घर के अंदर, आपने भी इसी वजह से जाहिर है मैसेज लिखा है कि पर्दे का ख्याल नहीं करती हैं, बाद में फिर आहें भरती हैं। उसी तरह कजन के साथ भी जो है ना वो शादी कर लेते हैं, हालांकि कजन के जो है वो अतवार अच्छे नहीं होते और उसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई होती, लेकिन जाहिर है नाउज बिल्ला हमने तो पर्दे की दो किस्में बना दी है ना, एक होता है पर्दा और दूसरा होता है शरी पर्दा, ठीक है, एक होता है पर्दा और दूसरा होता है शरी पर्दा, तो फिर पहला वाला पर्दा क्या चीज होती है भाई, वो कहाँ से आया, तो शरीयत से ही आया वो पर्दा, वो आपने अपना अपने मिजाज से बना लिया, यानी जिसके अंदर कजन से कोई पर्दा नहीं होता उसको कहते हैं पर्दा, जिसमें कजन से पर्दा नहीं करना, चाचा क्या कहते हैं खालू से पर्दा नहीं करना, और जो है वो बहनोई से पर्दा नहीं करना, उसको कहते हैं पर्दा, और जहां पर जो है वो कजन से पर्दा हो वहां पे कहती है शरी पर्दा। अल्लाह का शुक्र है शरीयत को तब्दील तो कम अज कम नहीं किया, ठीक है ना, तो फिर मासी से भी पर्दा नहीं, तो फिर वो जाहिर सी बात है फिर मासी, भाई अल्लाह ताला तो फिर अपना काम करते हैं ना, ये दिलों के अंदर जो कैफियात पैदा होती हैं या कैफियात खत्म होती हैं ये अल्लाह की तरफ से, ये सजा के तौर पर या जजा के तौर पर अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही अता फरमाते रहते हैं। किटन लेने से पहले कारपेट की पाकी को लेकर बहुत फिक्रमंद थे, उसका हल ये निकाला कि हर दफा जब किटन लिटर में जाती है तो उसे वाइप कर देते हैं, लिटर में जाती है तो उसे वाइप कर देते हैं, यानी आपकी जो किटन है वो कारपेट के ऊपर ही लिटर कर देती है, उसका लिटर बॉक्स नहीं है, अगर लिटर बॉक्स होता है ना तो बिल्लियां जो होती हैं ना जो घर के अंदर रखने वाली बिल्लियां होती हैं, तो वो ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से उनकी फितरत बनी हुई है, कोई ट्रेनिंग वेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कि वो लिटर बॉक्स में जा करके ही पारे होती है, वो कारपेट के ऊपर पारे नहीं, ठीक है, तो उसके लिए लिटर बॉक्स का इंतजाम करके रखना पड़ता है घर में कम अज कम एक जगह या दो जगह पे, लेकिन फिर भी कभी एक्सीडेंट हो सकता है, तो एक्सीडेंट तो बिल्ली से भी हो सकता है, एक्सीडेंट तो किसी बच्चे से भी हो सकता है, एक्सीडेंट तो किसी बूढ़े से भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा स्पिल हो जाए तो फौरन उसको साफ कर देना चाहिए, लेकिन साफ करने का तरीका भी सीख सीख करके साफ करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आपने उसको, कारपेट को साफ करना इज अ बिग इशू, ठीक है, अक्सर जाहिर है कारपेट को आप उठा करके जमीन से उखेड़ करके जो है वो जा करके प्रॉपर तरीके से तो नहीं धो सकते, तो उसके लिए जो है ना वो या तो गीले कपड़े से इतना उसको अच्छी तरीके से पोछा जाए, बार बार पोछा जाए और उसको गीले कपड़े को जो है वो फिर निचोड़ा जाए, फिर वापस ला करके उससे जो है पोछा जाए, कि उसके जितने अज्जा हो सकते हैं ना कारपेट की उस जगह के ऊपर जहाँ पे वो स्पिल हुआ है, चाहे यूरिन स्पिल हुआ हो, चाहे जो वो कोई और चीज ऐसी स्पिल हुई हो, नजासत उल्टी हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है, तो वो कारपेट के ऊपर पतली पड़ जाती है, तो उनके अज्जा को जो है ना वो गीले कपड़े से रगड़ रगड़ करके उठाना, उसी के अंदर कपड़े में उठाना और फिर जो है वो सिंक में जाकर के निचोड़ करके उसको साफ करना, फिर उसके बाद उसी या उसी कपड़े से या किसी दूसरे कपड़े से फिर उसको हत्ता के चंद दफा इस तरह से करके फिर वो नजासत के सारे पीसेज उसमें से उठ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो कारपेट की क्लीनिंग एक तो लेवल हो गया ना, वैक्यूम क्लीनिंग, ठीक है, वो तो खाली गर्द के और गर्दो गुबार के अज्जा को उठाई, ठीक है, या जो है वो जरासीम है तो उनको भी वो सक कर सकती है, लेकिन एक है नजासत की क्लीनिंग, तो नजासत की क्लीनिंग वैक्यूम क्लीनर से आप नजासत को क्लीन नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात इसके अंदर बहुत अहम है कि अगर आप किसी नए किसी घर में मूव हो रहे हैं और वहां पे पहले से कार्पेट मौजूद है, ठीक है। तो अब उस घर वालों के बारे में आपको नहीं पता कि पता नहीं वो कैसे रहते थे अपने घर के अंदर, मुसलमान भी थे काफिर थे, या अगर मुसलमान थे भी तो उनको पाकी ना पाकी का कुछ पता भी था कि नहीं पता था, ठीक है। तो अब घर में मूव होने से पहले जो है ना वो बकायदा कारपेट वॉशिंग का इंतजाम करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो है वो कारपेट वॉश करने की मशीन्स बकायदा मिलती हैं, पता नहीं अमेरिका में तो खैर मिलती थी, तो मैं जब एक नया अपार्टमेंट मूव हुआ था शादी से पहले की बात है, तो मेरे उस्ताद साहब ने बकायदा मुझे कहा था कि इस दुकान में जाओ वहां पर कारपेट वॉशिंग वैक्यूम क्लीनर है, यानी वो अलग ही वैक्यूम क्लीनर होता है, वो बाकायदा रेंट कर सकते हैं, वो कारपेट को जो है ना वो पानी की साइकिलिंग करके वो इस तरीके से उसको क्लीन करते हैं। तो मैंने फिर वो बाकायदा रेंट किया उस जगह से और घर में ला करके उसमें क्योंकि कारपेट लगी हुई थी तो पूरा उसको वॉश किया, फिर उसको जाहिर ड्राई होने में भी टाइम लगा था, फिर उसके बाद अपना सामान घर के अंदर यूज किया था, ठीक है। तो कारपेट जो है ना ये देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा दर्द सर है एक्चुअली, ठीक है। तो बेहतर तो यही होता है कि भाई आप या तो मार्बल फ्लोरिंग रखें या हार्डवुड फ्लोरिंग होती है, ठीक है, यानी बाकायदा लकड़ी की फ्लोरिंग होती है बाहर के मुल्कों के अंदर, वो भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, या ये कि हम जैसे सस्ते लोगों के लिए जो है वो वाइनल फ्लोरिंग, वाइनल फ्लोरिंग जो है ना ये एक तरह की प्लास्टिक ही होती है, और इसके नीचे थोड़ी सी पैडिंग भी होती है ताकि थोड़ा सा एक फील भी ऐसा आता है, उसकी डिजाइन ऐसे होते हैं जिसको देख करके लगता है कि ऐसे ये हार्डवुड फ्लोरिंग है या कोई बहुत ही अच्छी किस्म का उसका, लेकिन होती असल में वो वाइनल है, ठीक है। उससे फायदा ये होता है कि सफाई सुथराई जो है ना वो मसला नहीं रहता, ठीक है, झाड़ू भी आसानी से दे सकते हैं, पोछा भी आसानी से दे सकते हैं, और खुदा ना खासा कुछ लीक हो जाए कुछ स्पिल हो जाए तो उसको भी साफ कर देना जो है वो बड़ा आसान काम होता है, लेकिन जाहिर है उसके नेगेटिव साइड उसकी ये होती है कि जाहिर है क्वालिटी में वो कम कम ही इसका हैसियत होती है, तो वो फिर कुछ अरसे के बाद जो है ना उसके ऊपर निशान पड़ने दाग पड़ने, तो भाई फिर आप उसको चेंज करवा लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसको नई नई वाली वायरल फ्लोरिंग करवा लें या काम सारा है जिस तरह से, ठीक है। तो वाइनल है VINYL वाइनल फ्लोरिंग कारपेट से, तो हमने तो यही देखा गया बहुत ही बेहतर सोल्यूशन है, वरना कारपेट पर गंदी भी हो जाती है खराब भी हो जाती है, उसके फर्श भी खत्म हो जाते हैं हार्ड हो जाती है, और हाँ एक और भी बहुत बड़ा मसला होता है कि खवातीन माशाल्लाह तो खवातीन के बाल भी बहुत झड़ते हैं आजकल ग़िज़ाएं, और इसके अलावा शैम्पूज और ये सब इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें तो नहीं होती है ना, तो बालों का मामला बहुत जो होता है ना वो झड़ते हैं बाल बहुत बार, ठीक है, मर्दों के भी झड़ते हैं लेकिन औरतों के तो बाल लंबे होते हैं माशाल्लाह, तो अब वो जो बाल गिरते हैं ना तो वो कारपेट के अंदर ऐसे फंस जाते हैं कि इवन वैक्यूम से भी नहीं उठते, ठीक है। तो वाइनल फ्लोरिंग या मार्बल फ्लोरिंग या किसी और किस्म की फ्लोरिंग अगर हो तो उसके अंदर क्या होता है कि बाल कुदरतन अल्लाह ताला का निजाम है कि पंखा चलता है ना, तो पंखे चलने से इस किस्म के जो बाल वगैरह होते हैं वो पंखे की हवा से खुद ही साइड पे हो जाते हैं और फिर उनको उठा लेना भी बड़ा आसान, ठीक है, या वो नजर आते हैं आप उनको उठा सकते हैं, कारपेट के अंदर तो ये बहुत बड़ी मसला उलझन हो जाती है, ठीक है। एलर्जीज भी होती हैं कुछ लोगों को कारपेट से, फिर अगर आपके घर में ये पेट्स वगैरह हैं तो पेट्स की भी एलर्जीज कारपेट की वजह से और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो बहरहाल हम लोग फिर भी कारपेट जाहिर है कोई तो नहीं निकाल सकता अपने घर से, क्योंकि रखना है तो फिर उसकी आपने इंतजाम करना पड़ेगा अगर आप बीमारियों से और नजासत से और बाकी वगैरह का इंतजाम करना है, ठीक है। और कुछ चीज रह गई है, हाँ वो इंशाल्लाह फिर हम जाए तो अगली क्लास में, बस एक बात करनी थी कि क्लीनिंग जो है ये बहुत जरूरी बेशक है और अल्लाह ताला को तहारत पसंद है बेशक अपनी जगह पे, सब बहुत अच्छी सही बात है, लेकिन एक चीज होती है क्लीनिंग फ्रीक बन जाना, ठीक है, क्लीनिंग फ्रीक यानी जो चीज साफ कर भी चुके हैं ना उसको भी बार बार साफ करते रहना, ठीक है, तो ये जो है ना फिर एक नफसियाती बीमारी की शक्ल अख्तियार कर जाती है, इसको जो है वो रोकने की जरूरत होती है, किसी को अगर आप देखें या अपने आप को देखें कि आप क्लीनिंग फ्रीक बनती चली जा रही हैं, यानी एक नफसियाती तौर पर जो है ना बहुत ज्यादा बार 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 वाली बात, तो फिर यू नीड हेल्प। या तो डॉक्टर के पास जाएं, किसी फोबिया भी इसको कहते हैं हमारी जुबान में, फोबिया, ठीक है, और इसको ज़्यादा साइंटिफिक टर्म के अंदर इसको ओसीडी भी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बाकायदा एक क्लिनिकल डायग्नोस्ड नफसियाती बीमारी है, और जिनको ये हो जाती है, अब वो बाथरूम में जाते हैं ना, तो फिर वो पौन घंटा, यानी एक होता है भी कब्ज हुआ है आपको या कोई और मसला है तो आपको टाइम लग रहा है यहाँ पे आप, लेकिन छोटे से काम के लिए वो आधे पौन घंटे तक लगे हुए हैं और फिर भी नहीं निकल रहे, हत्ता के बाहर के लोग जो हैं वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, पीट रहे हैं भाई निकलो बाहर, लेकिन वो इसी में बार 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 बार, ठीक है, तो ये ओसीडी होता है। इसी तरीके से कुछ औरतों को जो है वो डस्टिंग की ओसीडी हो जाती है, अब वो डस्टिंग जो है ना वो एक इंतहा दर्जे की जो है ना वो डस्टिंग के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो किचन की बर्तनों को, अब वो जो धुले हुए बर्तन है उनको दोबारा दोबारा धो रही है, ठीक है, तो ये है आप लोगों में ऐसे लोग हम जानते हैं, ठीक है, और हम किसी और को भी बताने के लिए एक जनरल मसला है ये, ठीक है, तो इस मसले को फिर जो है ना वो अल्लाह की दुआओं से और दवाओं से या मशवरों से इस मसले को जो है ना वो हमें हल करना चाहिए। तो क्लीनिंग का मतलब जो है ना वो फोबिया नहीं है, ठीक है, ओसीडी नहीं है इसका मतलब। तो कोई ये मत समझे कि हजरत ने इतना बयान कर दिया, इतनी लेक्चर दे दिया, अब तो हमें जायज हो गया ये सब काम करना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं हो, ठीक है, इतदाल इसके अंदर भी बहुत लाजमी है। अल्लाह ताला बात के समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम अलैकुम।